मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 17 मई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं आइलिन जोसफ, आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, शशांक शेखर दीबार, आप कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, कुलवीर सिंह, आपका जो गांव है वो है गारू, जिला है हनुमानगढ़ राजस्थान, यशपाल सिंह, आप पाली गांव से हैं, जिला है मथुरा उत्तर प्रदेश, किशोर कुमार शर्मा, आप रोही मोर जम्मू कश्मीर से हैं, और संजय धाकड़, आपका जो गांव है वो है झरबरौदा, जिला श्योपुर मध्य प्रदेश। तो आइलिन, शशांक, कुलवीर, यशपाल, किशोर और संजय, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय में हम लोग उत्तर लिखने के संकट पर कुछ बातें करेंगे मुख्य विषय के अंतर्गत, लेकिन आइए पहले न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं। और आज के न्यूज में काफी चीजें हैं, देखिए कभी कभी तो कुछ भी नहीं रहता है और कभी काफी चीजें मिल जाती हैं बात करने के लिए। सबसे बड़ी जो घटना है या सबसे बड़ी जो खबर है कह लीजिए, वो कर्नाटक में सरकार के गठन को लेकर के है, जिसके बारे में कल मैंने कुछ बातें आपसे की थी। न्यूज में खूब आ रहा है, अखबारों में भी खूब आ रहा है, तो जो आ रहा है उसे आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, राइट। मैं उसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा, कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। प्रॉब्लम क्या है, तो जैसे आप देखिए कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलिखित संविधान है, राइट। और इतना पुराना पुरानी संसदीय व्यवस्था, या कह लीजिए कि लोकतंत्र वहां काम कर रहा है। अमेरिका का संविधान है भारत से कई गुना ज्यादा पुराना है, लगभग 200-250 साल पुराना, 225 साल पुराना संविधान है उनका, उल्लिखित है लेकिन बहुत छोटा सा है, कहते 4-5 हजार शब्दों का संविधान है, राइट। ब्रिटेन का लिखा हुआ नहीं है, अमेरिका का लिखा हुआ है तो बहुत ही थोड़ा सा लिखा हुआ है, नहीं के बराबर लिखा हुआ है, और हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और लिखित संविधान है, राइट। तो एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो बिना लिखे भी काम कर रही है और ठीक ठाक ही काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। अमेरिका है जिसने थोड़ा सा लिख लिया वो भी काम कर रहा है, और भारत ने जो इतना सारा लिखा वो भी काम कर रहा है, काम कर रहा है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था काम कर रही है। शिकायत के लिए हर व्यवस्था में गुंजाइश होती है, हमारी व्यवस्था में भी है, ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन तीनों व्यवस्थाएं काम कर रही है। क्यों, कैसे काम हो रहा है, क्यों काम कर रही है, और कैसे और अच्छे से ये काम कर सकती है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन ये है कि देखिए, लोकतंत्र एक पॉलिटिकल सिस्टम है, नो डाउट, ये बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम ही है और पॉलिटिकल सिस्टम के तहत ही इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन मूलतः यह एक जीवन पद्धति है, एक लाइफ स्टाइल है। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी बात है वो रिटन वर्ड्स में से जुड़ी हुई बात नहीं है, वो उसकी आत्मा से जुड़ी हुई बात है, सोल से जुड़ी हुई बात है, भावना से जुड़ी हुई बात है। लोकतंत्र मूलतः एक भावना है। उदाहरण के तौर पर अभी जो कर्नाटक में सरकार बनने की बात आ रही है, देखिए जब हम एक पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के बात कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं, राइट। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव हुए, राइट, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली, थोड़ा सा बीजेपी पीछे रह गई है, तो गणित में पीछे रह गई है, गणित के मामलों में पीछे रह गई है और थोड़ा सा पीछे रह गई है, मतलब फिनिशिंग लाइन को टच करने से पहले ही वो बस रुक गई है, थोड़ा सा रुक गई है ना, 8-9 सीटें अगर और मिल जाती तो सरकार बना लेती और वो भी 225 सीटों में से। कांग्रेस सेकेंड पोजिशन पर रही है लेकिन जितनी सीटें उसकी उसको जरूरत थी उससे बहुत पीछे रह गई है, बहुत उससे वो पीछे है। तीसरे पोजिशन पर जनता दल एस है जो बहुत कम है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक ही है, उसके पास भी टोटल अगर हम संसदीय संख्या को देखें, सीट की संख्या देखें तो 1/5 के आसपास है मोटे तौर पर, तो मैं बहुत मोटे आंकड़े की बात कर रहा हूं। तो अब ये तो कैलकुलेशन होगा, बट नेचुरली कि आधे से अधिक आपको अपना सीट चाहिए और आपको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, और बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा तो वो एक गिनती का खेल है। ये तो एक सिस्टम है जो काम करेगा ही, मतलब इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन कर्नाटक में जो एक संकट पैदा हो गया है, और इस तरह के संकट अब खूब आने लगे हैं, आप देखेंगे बहुत ज्यादा आने लगे हैं। चलिए, ये एक मेच्योरिटी का भी परिचायक होता है। इस तरह की जब स्थिति आती है तो ये माना जाता है कि जनता कहीं ना कहीं मेच्योर हो रही है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब एज ए ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए पब्लिक को कि नहीं वो तो एक तरफा निर्णय लेगी, ऐसा नहीं है, आप उसको बरगला नहीं सकते, इससे ये भी सिद्ध होता है। लेकिन मूलतः अगर हम, जो मैं लोकतांत्रिक भावना की बात कर रहा हूं, तो उससे ये भावना परिलक्षित होती है कि सरकार, वहां की जनता ने पहली बात तो है कि कांग्रेस को अस्वीकार किया है, भावना की बात है ना, कांग्रेस को अस्वीकार किया कि नहीं पांच साल हमने देख लिया, अब हम बदलाव चाहते हैं। उसने जनता दल एस को भी स्वीकार नहीं किया है, हम ये नहीं कह रहे कि उसने अस्वीकार किया, लेकिन उसने स्वीकार भी नहीं किया है क्योंकि उस थर्ड पोजिशन पर है। तो अगर उसने स्वीकार किया है तो इनफैक्ट अगर हम आत्मा के तहत देखें तो उसने भारतीय जनता पार्टी को किया है कि नहीं हम इनकी सरकार को एक बार मौका देना चाहते हैं। अगर भावना की बात करें तो गिनती के मामले में वो पास होते होते थोड़ा सा फेल हो गया, अब उनको ग्रेस मार्क की जरूरत है। तो बस मित्रों, मैं जो थोड़ी सी ये बात कर रही थी, क्योंकि सिविल सर्विस में इस तरह के विश्लेषण की जरूरत होती है, राइट। अब आइए मैं दूसरी बातों पर आता हूं। न्यूज में दोस्तों, एक राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति घोषित कर दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, और इसकी मुख्य बात यह है कि अब जो है, जैसे गेहूं खराब हो जाता है, चावल सड़ जाते हैं, आलू सड़ जाते हैं, मक्का, शकरगंद, इन सब से भी जो एथेनॉल बनता है उसे आप पेट्रोल में मिला सकते हैं, ये अनुमति कैबिनेट ने दी है। इससे पहले केवल जो गन्ने से एथेनॉल बनता था उसे ही मिलाने की अनुमति थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नीति है आज के संदर्भ में, भारत की तेल की आवश्यकता के संदर्भ में। तो इसे आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा, वक्त की कमी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। एक छोटी सी खबर है मित्रों कि मलेशिया में आप देखते हैं कि महातीर मोहम्मद साहब प्रधानमंत्री बनकर के आ गए हैं, 92-93 ईयर्स की उनकी एज है, और आते ही उन्होंने जीएसटी, मलेशिया में जीएसटी को समाप्त करने की घोषणा की है। भारत को अभी शुरुआत हुए एक साल पूरे होने को है और वो वहां उसे समाप्त कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या लिखा जाता है, क्यों समाप्त कर रहे हैं, क्या संकट आया है। तो भारत के लिए भी थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है कि वह वहां की स्थिति का बहुत अच्छे से अध्ययन करे। एक स्टेटमेंट आपने न्यूज में सुना है मित्रों, स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान से जो शुगर आयात हो रहा है उसको लेकर के एक स्टेटमेंट था, और आरोप की लगाया गया था विपक्षियों के द्वारा, खासकर महाराष्ट्र के द्वारा, कि जो केंद्र सरकार है वो बहुत ज्यादा चीनी का आयात कर रही है, और चीनी का आयात करने से जो घरेलू चीनी के दाम है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है कि आयात करने से घरेलू चीनी के दाम गिर रहे हैं। इसको थोड़ा सा बस आप लोग सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये होमवर्क जैसा है। इसके बाद मित्रों, एक इम्पॉर्टेंट प्रशासन के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कल रेडियो न्यूज में, तो मेरी समझ से ये मुझे सुनने को नहीं मिला, लेकिन दूरदर्शन न्यूज में थी जब रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो सरकारी विभाग होते हैं और जो सरकारी कंपनियां होती हैं जिसे हम पीएसयू कहते हैं, तो इनके आपस में बहुत से विवाद होते रहते हैं और फिर वो विवाद सीधे सीधे कोर्ट चले जाते हैं। तो अब ये व्यवस्था की गई है कि नहीं, जब इनके विवाद होंगे तो कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले तो इनके जो सेक्रेटरीज हैं वो आपस में बैठ करके बात करेंगे, अगर तब भी विवाद नहीं सुलझा तो फिर एक कमेटी बनेगी जिसमें लॉ सेक्रेटरी होंगे, लॉ सेक्रेटरी अपील है कह लीजिए उसको, तो लॉ सेक्रेटरी अपना निर्णय देंगे। अगर लॉ सेक्रेटरी को भी स्वीकार नहीं करते उनके अपील को, उनके निर्णय को, मतलब विभाग और कंपनियां स्वीकार नहीं करती है, तो फिर वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास अपील करेंगे, जो सर्वोच्च, एक तरह के भारत देश का सर्वोच्च नौकरशाह होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, और वो फिर जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो डिसीजन देंगे वह उसमें फाइनल माना जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपकी तो जो करने जा रहे हैं उससे संबंधित है, और ये बहुत प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभी ये छोटी चीज लग रही है लेकिन इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट होंगे। तो मित्रों, ये कुछ खबरें थी। आइए, वक्त बहुत कम बच गया है मुख्य विषय के लिए, लेकिन हम चलिए कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, हम लोग हर सैटरडे आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, आप इसका उत्तर लिखें, और लगातार मेरे पास इसके बारे में आप सबके अनुरोध आते हैं कि सर उसका आप मॉडल आंसर डाल दिया कीजिए। नो डाउट कि आप जो कह रहे हैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे मॉडल आंसर नहीं डालना चाहिए, और देखिए कि मैं डाल भी नहीं रहा हूं। मैं क्यों नहीं डाल रहा हूं उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि मैंने एक आपको क्वेश्चन लिख करके दिया, पहले आप अपने संकट को समझिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख करके दिया है, क्वेश्चन दिया है और आपको पूरी छूट दी है, पूरी छूट है आपके लिए कि आप इसकी तैयारी कीजिए, मैगजीन कंसल्ट कीजिए, किताबें कंसल्ट कीजिए, टॉपिक देखिए, जो कुछ भी आप कर सकते करिए और इसके बाद उत्तर लिखिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मॉडल आंसर चाहिए, क्यों लगता है आप बताइए मुझे, कहां आप कमी अपने अंदर महसूस करते हैं? अभी आप देखिए यूट्यूब पर जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनसे उत्तर कैसे लिखते हैं, हर कोई पूछता है, राइट? और वो अपने ढंग से बताते हैं, और जो बताते हैं वो सबका ढंग बिल्कुल एक है, लेकिन जब आप उनके उत्तर चेक करेंगे ना, एक ही सेम प्रश्न के उत्तर, तो वो एक जैसे नहीं मिलेंगे, वो एक जैसे नहीं मिलेंगे। आप इसकी जो चुनौती है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक उस तरह की मशीनरी नहीं है, एक आपको ऊपरी ढांचा तो बताया जा सकता है और ऊपरी ढांचा आपको मालूम है, जो पूछा गया है वो लिखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप हाईलाइट कर दीजिए, यही सब तो बताएंगे ना। फालतू की चीजें मत लिखिए, अपने को भटकने से बचाइए, ये तो कोई भी बताएगा। और बताएगा क्या, क्या आप सच में नहीं जानते? क्या आप अच्छा उत्तर उसको मानते हैं कि पूछा कुछ जाए और लिखें आप कुछ, या लिखते लिखते आप भटक जाएं, ये अच्छा उत्तर होता है आपको लगता है क्या? ये तो आप भी तो जानते हैं, फिर प्रॉब्लम कहां है? आपको देखिए इस प्रॉब्लम की जड़ पे जाना होगा। अगर मैं बता भी दूं ना कि अच्छे उत्तर के ये लक्षण होते हैं तो बात नहीं बनेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे गाड़ी चलाई जाती है या ऐसे ऐसे तैरा जाता है, तो आप न तो गाड़ी चला सकेंगे और न तैर सकेंगे। लेकिन जो उत्तर लिखने की चुनौती है उसका एक और संकट है, इससे भी गहरा संकट है। तैराकी तो आप कर लेंगे जब आप तालाब में नदी में उतर करके सीख लेंगे, ठीक है। गाड़ी चलाना भी आप तब सीख लेंगे जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठ करके कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन उत्तर लिखना याद रखिए कि प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा। उत्तर लिखना प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा, क्योंकि जब आप तैरने जा रहे हैं तो आपके लिए नदी पहले से मौजूद है, वहां सीखेंगे। जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो गाड़ी का इंजन ढांचा आपके लिए पहले से मौजूद है, वहां आप सीख लेंगे। लेकिन जब उत्तर लिखने की बात आएगी तो आपके पास कोई ढांचा मौजूद नहीं है, कोई ढांचा मौजूद नहीं, ना आपके पास नदी तालाब है और ना आपके पास गाड़ी है। लेकिन आपको गाड़ी चलाना है और नदी में तैरना सीखना है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको नदी या तालाब बनाना पड़ेगा, आपको गाड़ी बनानी पड़ेगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं मित्रों, पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। नदी तालाब बनाना होगा या गाड़ी बनानी होगी, इसका मतलब है कि आपको क्या लिखना है पहले ये जानना होगा, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ाई के जब कंटेंट आपके पास होंगे तभी तो आप लिख सकेंगे। इसी को मैंने कहा है नदी तालाब या गाड़ी आप कह लीजिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल इनके इकट्ठा कर लेने से बात नहीं बनेगी, पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी, जो दूसरे में बात बन जाती है, दूसरे एग्जामिनेशन में बात बन जाती है। और यही वह पॉइंट है जो सिविल सर्विस को सबसे कठिन परीक्षा बना देती है और यहां तक कि दुनिया के कठिनतम परीक्षाओं में से एक बना देती है। और वो ये कि अगर आप पढ़ भी लेते हैं, आपको मालूम भी है, तब भी हो सकता है कि आप उत्तर ना लिख सकें, यानी कि लेकिन आपको उत्तर तो लिखना है। यानी कि जो सारी चुनौती है, प्लीज मित्रों इसे समझने की कोशिश कीजिए, आत्मसात करने की कोशिश कीजिए कि सिविल सर्विस के उत्तर लिखने की जो चुनौती है वो अच्छा उत्तर लिखने की चुनौती नहीं है, बल्कि आपके पढ़ने के ढंग की चुनौती है कि आप पढ़ किस तरीके से रहे हैं। और पढ़ने से अब उस एक शब्द को रिप्लेस कर दीजिए और वहां पर रख दीजिए पढ़ने की जगह पर समझने की चुनौती है, कि आप समझ कैसे रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने लोकतंत्र को एक ढांचागत स्थिति से हटा करके एक अलग तरीके से समझाने की अंदाज में आपके सामने पेश किया। तो मित्रों, जब तक आप अपने पढ़ने की पद्धति को दुरुस्त नहीं करेंगे, उत्तर लिखने की पद्धति कभी भी आपकी दुरुस्त नहीं हो सकती। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब मुख्य विषय को यहीं समाप्त करते हैं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां पर देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा मेल आया है, ये सचिन का है, सचिन आदगांवकर का, जो अकोला महाराष्ट्र से है। ये हमारे सेवंथ बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं। इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सूचना दी है और वो ये है कि इनके यहां किसी का विवाह था और उस विवाह में जो भेंट के तहत जो उनकी धन जो आया, उस पूरे के पूरे पैसे को उन्होंने, जो गरीब लोग होते हैं, उस शादी की रकम को, मतलब उस सार्वजनिक कार्यों के लिए, इस तरह के कार्यों के लिए खर्च करने का निर्णय लिया। तो सचिन, मैं आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और यह प्रशंसा एकेडमी की टीम की ओर से है, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से है और हमारे सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से भी है। ईश्वर आपके विचारों को और आपके हृदय को और आपके पूरे परिवार के विचारों को और हृदय को खूब उदार बनाए और इसके बदले में कई गुना आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करे। तो मित्रों, मैं धन्यवाद देता हूं सचिन को, धन्यवाद देता हूं तनुप्रिया को जो मोहाली पंजाब से हैं और धन्यवाद देता हूं पीयूष अग्रवाल को जो अमृतसर से हैं। तो मित्रों, अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।